ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार नौवीं बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। आज मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेंगी। आर्थिक वृद्धि को गति देने और मुद्रास्फीति को 4% के स्तर पर लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने नीतिगत दरें यथावत रखने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने आज न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के ताकीना वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह राजधानी वेलिंगटन पहुंची। न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडिकीरो की उपस्थिति में वेलिंगटन के गवर्नमेंट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति ने वेलिंगटन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू गवर्नमेंट हाउस में न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडिकीरो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री सह विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश करेंगे। ये विधेयक जमीन के पंजीकरण और सर्वेक्षण से जुड़े मामलों में राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज और अधिकारों से जुड़ा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि सरकार को उन तमाम संस्थाओं से बात करनी चाहिए जो इस विधेयक से सीधा प्रभावित होंगी। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सदन में इस विधेयक का विरोध करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले ने मांग की कि इस विधेयक को जरूरी बदलावों और सुझावों के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि यह कानून उन अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया। गरीब अल्पसंख्यकों की कई शिकायतें थीं कि उनकी संपत्ति वक्फ बोर्डों ने ले ली है। राज्यसभा में आज विपक्षी दलों ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर वॉकआउट किया। सुबह जब सदन शुरू हुआ तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की जिसे अस्वीकार कर दिया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के और खासकर टीएमसी के सदस्य डेरेक ओब्रायन के आचरण की निंदा की। श्री धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह खुद और पूरा देश विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने से दुखी है, पर इस मामले में राजनीति करना कुश्ती का अपमान है। श्री धनखड़ ने आगे बताया कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वे विनेश को वो पूरा सम्मान देगी जो एक पदक विजेता को दिया जाता है। राज्यसभा में सदन के नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी विपक्ष के आचरण की निंदा की। उन्होंने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है। श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों के 77% से ज्यादा घरों में नल से जल उपलब्ध कराया है। लोकसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में यह योजना शुरू की थी और अब तक 15 करोड़ घरों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा कि करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में आज रात मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अपना खिताब बरकरार रखने उतरेंगे। वहीं पुरुष हॉकी टीम आज शाम कांस्य पदक के लिए स्पेन के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।